भजन संहिता 17। 17वां भजन भी दाऊद की प्रार्थना है। ये भजन भी दाऊद की उन प्रार्थनाओं में से है जिसमें दाऊद स्वयं के लिए और स्वयं की धार्मिकता के लिए प्रभु के सम्मुख प्रार्थना कर रहा है। भजन 17:1। हे यहोवा परमेश्वर, सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुंह से निकलती है कान लगा। ये आवश्यक है कि हमारे होठों से हमारी प्रार्थनाएं कपट से ना निकले। मैं डरता हूं कि बहुत बार मैंने छलपूर्ण प्रार्थना की है कि शायद परमेश्वर को छला जा सके। मैं सदा अपनी प्रार्थनाओं में ईमानदार नहीं रहा हूं। बहुत सी प्रार्थनाओं में मैंने अपने आप को बहुत अच्छा दिखाया है, पर वास्तव में मैं वैसा हूं नहीं। और मैंने पाया कि परमेश्वर जब तक मेरे साथ व्यवहार नहीं करता, तब तक मैं उसके साथ पूरा ईमानदार न बन जाऊं। जब तक मैं ये कहता रहता हूं, हां प्रभु, मैं इसे कर सकता हूं, मुझे थोड़ी सहायता चाहिए, तब तक मैं ईमानदार नहीं हूं और मुझे सहायता नहीं मिलती। क्योंकि यदि वो उन शर्तों के साथ सहायता करता है, तब मैं ये कहता रहूंगा, मैं पहले से ही जानता था कि मैं ये कर पाऊंगा। वस्तु स्थिति तो ये है कि जब मैं ईमानदारी से कहूं, परमेश्वर मैं नहीं कर सकता, मेरी सहायता कर, तब वो आकर मेरी सहायता करता है, ताकि मैं ये कह सकूं, प्रभु ने मेरी सहायता की, मैं उसे मान्यता और महिमा दूं। प्रभु तू जानता है मैं इस भाई से परेशान हो गया हूं, मुझे जितना करना चाहिए मैं उतना प्यार उसे नहीं करता, प्रभु मैं उसके लिए प्रीति बोझ नहीं करता। ये एक तरह का छल है, ये सच नहीं है। प्रभु तू जानता है कि मैं मन से बैर रखता हूं, मैं उसे फूटी आंख नहीं देख सकता, जब भी मैं उसे देखता हूं वो मुझे नीरस कर देता है, मैं उसकी नाक पर घूसा मारना चाहता हूं, परमेश्वर मेरे दिल और व्यवहार को बदल। तब परमेश्वर स्वयं मेरे साथ व्यवहार करेगा। इसलिए दाऊद कहता है, प्रभु मैं छल पूर्ण होठों से नहीं बोल रहा हूं। इसी बात का ध्यान हमें अपनी प्रार्थनाओं में रखना चाहिए। ये कपटपूर्ण हो सकती है, बहुत कपटपूर्ण। हमें नहीं मिलता क्योंकि हम मांगते नहीं, हम मांगते हैं परंतु नहीं मिलता क्योंकि कपट से मांगते हैं कि अपनी अभिलाषाओं में उड़ा दे। हमारी प्रार्थनाओं का उद्देश्य अधिकतर छिपा रहता है। ओ परमेश्वर, मेरे पुत्र को बचा, उसे अपने पास ले आ प्रभु। मैं अपने मन में सोचता हूं, मैं नहीं जानता कि इस बच्चे के साथ क्या करूं, इसको मैं आगे संभाल नहीं सकता। मैं जानता हूं कि किसी दिन जिस राह पर वो चल रहा है, मुझे एक फोन कॉल मिलेगा कि वो जेल में है, वे उसको उठा ले जाएंगे, हमारा नाम पेपरों में आ जाएगा। कितनी शर्म की बात होगी जब सब लोग हमारा नाम पेपर में देखेंगे कि हमारा पुत्र अपराध में पकड़ लिया गया, तब हमसे बदनामी सही न जाएगी, इसलिए प्रभु उसको बचा। मैं पेपर में अपना नाम आने के द्वारा हताशा में पड़ना नहीं चाहता। उद्देश्य ये नहीं है कि मेरा हृदय टूट रहा है क्योंकि मेरा पुत्र उस रास्ते पर चल रहा है जो नरक को जाता है। मैं ये नहीं चाहता कि मेरा भला नाम बदनाम हो। हे परमेश्वर, हमारी कलीसिया में नवीन जीवन का संचार कर दे प्रभु, आत्माओं को बचा, खोए हुओं को ला और इस स्थान को भर दे प्रभु। यदि हमारा बजट नहीं बढ़ा तो मैं नहीं जानता हम क्या करेंगे। यदि 5 नए परिवार और आ जाएं तो बजट की चिंता नहीं रहेगी। प्रभु आत्माओं को भेज ताकि बिशप समझे कि मैं अच्छा पास्टर हूं और मुझे उन्नति मिले और मैं एक बड़े चर्च में जाऊं। परमेश्वर आत्माओं को बचा। आप अपना उद्देश्य जानते हैं। मैं अपने आप को धोखा दे सकता हूं। मेरे मन में छल है और निराशाजनक रूप में ये दुष्टता है जिसे हम जानते भी नहीं है। इसलिए दाऊद भजन 139 में कहता है, हे ईश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत मार्ग में मेरी अगुवाई कर। ये प्रार्थना निष्कपट है, जो कपट या चल के होंठों से नहीं निकली। भजन 17 पद 2, मेरे मुकदमे का निर्णय तेरे सम्मुख हो, तेरी आंखें न्याय पर लगी रहे। यहां वो फिर से न्याय की याचना करता है। मैं प्रार्थना में शायद इस प्रकार कभी नहीं कर पाता, लेकिन दाऊद समझता है कि वो सही है, इसलिए वो कहता है, भजन 17 पद 3, मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। ये एक अच्छा विचार है। मैं समझता हूं हम बहुत बार अपने मुंह से बुराई करते हैं। हमारा मुंह हमें बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। वर्षों पहले जब हमने सेवा आरंभ की थी, तब हमारी संतान नहीं थी, परंतु हमें पता था कि बच्चों का पालन पोषण कैसे किया जाता है। हमें ये पता चलने लगा कि जितना हम विवाह के बारे में सोचते थे उतना जानते नहीं थे, लेकिन तो भी हम जानते थे कि बच्चों का पालन पोषण कैसे किया जाता है। तब तक हमारे अपने बच्चे नहीं हुए थे, परंतु आज हमें समझ में आता है कि बच्चों के पालन पोषण के बारे में हम कुछ नहीं जानते। उस समय हमने चर्च की पत्रिका में एक टिप्पणी लिखी, अपने बच्चों को शांत रहना सिखाए, वे शीघ्र ही बोलना सीख जाएंगे। हम खुद बोलकर कठिनाई में फंसते हैं। भजन संहिता 17 पद 3 से लेकर 8 तक, तूने मेरे हृदय को जांचा है, मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। मानवीय कामों में मैं तेरे मुंह के वचन के द्वारा क्रूरों किसी चाल से अपने को बचाए रहा। मेरे पांव तेरे पथों में स्थिर रहे, फिसले नहीं। हे ईश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की है, क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती सुन ले। तू जो अपने दैने हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को उनके विरोधियों से बचाता है, अपनी अद्भुत करुणा दिखा। अपने आंखों की पुतली की नाई सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। यहां दाऊद प्रभु से कहता है कि पुतली के समान मुझे अपनी आंखों में सुरक्षित रख और पंखों के तले छिपा रख। भजन 17 पद 9, उन दुष्टों से जो मुझ पर अत्याचार करते हैं, मेरे प्राण के शत्रुओं से जो मुझे घेरे हुए हैं। यहां वो अपने शत्रुओं के प्रति द्वेष से कहता है। भजन 17 पद 10 से लेकर 14 तक, उन्होंने अपने हृदयों को कठोर किया है, उनके मुंह से घमंड की बातें निकलती हैं। उन्होंने पग पग पर हमको घेरा है, वे हमको भूमि पर पटक देने के लिए घात लगाए हुए हैं। वो उस सिंह की नाई है जो अपने शिकार की लालसा करता है, और जवान सिंह की नाई घात लगाने के स्थानों पर बैठा रहता है। उठ हे यहोवा, उसका सामना कर और उसे पटक दे। अपनी तलवार के बल से मेरे प्राण को दुष्ट से बचा ले। अपना हाथ बढ़ाकर हे यहोवा, मुझे मनुष्यों से बचा, अर्थात संसारी मनुष्यों से जिनका भाग इसी जीवन में है और जिनका पेट तू अपने भंडार से भरता है। वे बाल बच्चों से संतुष्ट हैं और शेष संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। कितनी रोचक व्याख्या रचना है और आवश्यक भी है। संसारिक मनुष्य मनुष्य के बारे में कहता है, जिनका भाग इसी संसार में है। 73वें भजन में एक रुचिकर वाक्य है जहां भजनकार स्वीकार करता है, मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने पर थे, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था, मैंने देखा इन दुष्ट मनुष्यों के पास जो वे चाहते थे सब कुछ था, अर्थात जो उनका हृदय अभिलाषा करता था। लोग उन्हें पूरा प्याला भर कर देते थे, उन्हें किसी एक चीज की कमी न थी। जब मैं दुष्टों का कुशल देखता हूं, तब मैंने कहा, अच्छा जीवन जीने की कोशिश करने से मजदूरी नहीं मिलती, इससे अच्छा है दुष्टता में ही रहो तो अच्छी मजदूरी मिलेगी। यहां मैं अच्छा जीवन जीने का प्रयत्न कर रहा हूं और हर समय कठिनाई में रहा हूं। ऐसा लगता है मैं हर समय टूटा हुआ हूं और मैं सदा तंगी से गुजर रहा हूं और प्रभु की सेवा से लाभ नहीं मिलता। दाऊद ने कहा, जब मैंने इन बातों को समझने का यत्न किया, मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पर थे। जब तक मैं प्रभु के घर में नहीं गया और तब मैंने उनका अंत देखा। वास्तव में तूने उन्हें फिसलने वाले स्थान पर रखा है, वे क्षण भर में गड्ढे में जा गिरेंगे और समाप्त हो जाएंगे, परंतु उसने अंत देखा। वो संसारिक मनुष्य की बात करता है, जिन मनुष्यों ने इस जीवन का अपना भाग प्राप्त कर लिया है। परमेश्वर आपके अनंत जीवन के कल्याण में रुचि रखता है, इसे ना भूलें। परमेश्वर सदा अनंत जीवन के लिए आपके साथ व्यवहार करता है। मैं सदा आज को महत्व देता हूं, मैं आज का आराम देखता हूं, मैं आज की सुविधा देखता हूं, मैं आज छुटकारा चाहता हूं, मुझे अभी ये सब चाहिए ताकि मैं आने वाले कुछ समय तक आनंद कर सकूं। लेकिन परमेश्वर मुझे अनंत जीवन के विचार से देखता है। वो चाहता है कि मैं उसकी महिमा और राज्य की अनंत आशीषों को पाऊं, और शायद वो मुझे कुछ ऐसी चीजों से वंचित रखे जिन्हें मैं सोचता हूं कि मुझे अभी ही मिल जाए, ताकि मेरा अनंत जीवन उसके साथ वैभवशाली हो। यीशु ने बड़े कठोर शब्दों में कहा था, यदि तेरी आंख ठोकर खिलाए उसे निकाल दे। ये बात हमें परेशान कर देती है। जो उसने करने को कहा वो केवल एक उदाहरण दे रहा है जिससे हम परेशान हो जाए। ओह, मैं अपनी आंख नहीं निकाल सकता। यीशु आपके विचारों में क्रांति लाना चाहता है। वो हमें समझाना चाहता था। उसके कहने का अर्थ था कि अनंत जीवन कितना आवश्यक है। मैं समझता हूं कि मेरी आंख अत्यंत आवश्यक है, परंतु प्रभु के साथ अनंत जीवन से अधिक नहीं। ये एक उदाहरण है जिसके द्वारा वो सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा है कि इस जीवन में वो अति महत्वपूर्ण चीज है। संसार के लोगों ने तो अपना जीवन का भाग पा लिया, परंतु मैं यहां मुसाफिर और तीर्थ यात्री हूं। मैं अपना भाग आने वाले जीवन में पाऊंगा। मेरा भाग उसके राज्य में उसके साथ होगा। 15वें पद सारे भजनों में या पूरी बाइबल में मेरा सबसे प्रिय पद है। भजन 17 पद 15। परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा, जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। मैं धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। ये मुझे पौलुस के उन वचनों की याद दिलाता है जो उसने कोरिंथियों की कलीसिया से कहे थे। उसने कहा, दूसरा कोरिंथियों 3:18, परंतु जब हम सबके उधड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, मैं संतुष्ट हूंगा, मैं धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा और उस दिन संतुष्ट हूंगा जब मैं तेरे स्वरूप में हो जाऊंगा। उस दिन के आने में कितना समय लगेगा कि जब मैं जागूं तो दर्पण में अपने आप को यीशु मसीह के स्वरूप में देखूं। अभी तो हमें दर्पण में धुंधला दिखाई देता है, परंतु जब मैं आमने सामने देखूंगा, उसके कार्य मुझ में पूरे होंगे, तब मैं परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में जाना जाऊंगा। 1 यूहन्ना 3:2। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं, और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इस समय लोग भटक रहे हैं, ये कैसा शरीर है, मैं बिल्कुल चिंतित नहीं हूं, मैं संतुष्ट हूं कि मैं उसके समान होने जा रहा हूं, क्योंकि मैं उसके दर्शन करूंगा जैसे वो है। लोग सदा चिंतित रहते हैं, जब प्रभु आएगा तब मेरा शरीर किस तरह का होना चाहिए, मैं कैसे दिखाई दूंगा, मुझे नहीं पता कि मैं बदलना चाहता हूं या नहीं, शायद मैं इसी शरीर में रहना चाहूंगा, केवल नया हो जाना मेरे प्रियों ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं नया रूप आने तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता, उसकी तरह मैं संतुष्ट रहूंगा जब मैं तेरे स्वरूप में जागूंगा, धर्मी होकर उसके मुख का दर्शन करूंगा, उसके मुख का दर्शन पाकर हम महिमा से महिमा में बदलते जाएंगे।